एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन चुका है, लेकिन शायद हम उसे पूरी तरह समझते नहीं हैं। कंप्यूटर विज्ञान, अक्सर लगता है ना कि ये सिर्फ कोडिंग, एप्स या गैजेट्स के बारे में है।
हाँ, ये धारणा बहुत आम है, बहुत लोगों को ही लगता है। पर सवाल यह है कि क्या ये सच है? क्या कंप्यूटर विज्ञान वाकई सिर्फ कंप्यूटर चलाने या बनाने का हुनर है?
आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे सुब्रत दासगुप्ता की किताब कंप्यूटर साइंस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की। ये किताब ना इसी आम सोच को चुनौती देती है। बिल्कुल, दासगुप्ता का तर्क है कि कंप्यूटर विज्ञान असल में सोचने का एक बुनियादी तरीका है, एक नया विज्ञान जिसने गणित, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि आप सोचिए इंसानी सोच को समझने के हमारे तरीके को भी बदल दिया है।
सही कहा। और ये जो कंप्यूटेशनल सोच है, ये आज हर जगह है, मतलब हर जगह, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी हो गया।
तो चलिए आज पता लगाते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान का असली मतलब क्या है, इसके पीछे के विचार क्या हैं।
हाँ, पर इस सफर पर निकलने से पहले शायद लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। सुब्रत दासगुप्ता।
हाँ जरूर, कौन है ये और इनका नजरिया क्यों खास है?
देखिए, वो लुइजियाना विश्वविद्यालय लाफायट में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। लेकिन खास बात यह है
क्या?
कि वो सिर्फ कंप्यूटर विज्ञानी की नहीं है, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतिहासकार भी हैं और दार्शनिक भी।
अच्छा, ये तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन है।
हाँ, उनकी पिछली किताबें हैं जैसे इट बिगैन विद बैबेज, उनसे पता चलता है कि वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान क्या है, ये एक विचार के तौर पर कैसे विकसित हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
मतलब वो तकनीक से आगे जाकर देख रहे हैं, इसे इंसानी सोच की एक एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं।
बिल्कुल, उनका ये जो व्यापक दृष्टिकोण है ना, वही हमें इस विषय के सार तक ले जाने में मदद करेगा।
सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे हम। ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किताब कंप्यूटर विज्ञान की पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये एक अलग अनुशासन, एक फील्ड कैसे बना और हमारी दुनिया पर इसका इतना गहरा असर क्यों है। ये उन लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे झांकना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि कंप्यूटर वैज्ञानिक क्या करते हैं, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान दुनिया को देखने का एक नया नजरिया कैसे है।
और किताब का जो केंद्रीय तर्क है, जो सबसे बड़ी बात लेखक कहना चाहते हैं, वो क्या है?
मुख्य तर्क ये है कि कंप्यूटर विज्ञान सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग नहीं है, ये अपने आप में एक मौलिक, एक फंडामेंटल वैज्ञानिक अनुसंधान है। यह अध्ययन करता है कंप्यूटेशनल की घटना का, मतलब फिनोमेना ऑफ द कंप्यूटेशनल।
कंप्यूटेशनल की घटना, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कंप्यूटेशन की प्रकृति क्या है, उसकी शक्ति क्या है और हाँ, सबसे जरूरी, उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं।
हाँ, और मुझे याद है दासगुप्ता इसे हर्बर्ट साइमन के शब्दों में कृत्रिमना विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल।
सही।
ये प्राकृतिक विज्ञानों से अलग है, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसी चीजों से, क्योंकि वो कुदरत की बनाई चीजों का अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान उन चीजों का अध्ययन करता है जिन्हें इंसानों ने बनाया है, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर, ये सब।
बिल्कुल, हम इन्हें खोजते नहीं हैं, हम इन्हें बनाते हैं और फिर इनके नियमों को, इनके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये इंजीनियरिंग भी है और विज्ञान भी। तो किताब हमें कंप्यूटेशन के विचार की शुरुआत से लेकर चलती है, जो कंप्यूटर बनने से बहुत पहले मौजूद था, पता है?
अच्छा।
हाँ, पुराने एल्गोरिदम वगैरह, वहां से लेकर आधुनिक सैद्धांतिक सफलताओं तक, जैसे एलन ट्यूरिंग का काम, जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर।
और इसमें प्रैक्टिकल बातें भी हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी व्यावहारिक चुनौतियों पर भी बात होती है।
और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ तकनीक पर ही नहीं रुकती, ये कंप्यूटेशनल सोच पर बहुत जोर देती है।
हाँ, कंप्यूटेशनल सोच मतलब जटिल समस्याओं को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना, पैटर्न खोजना और फिर एक व्यवस्थित तरीके से समाधान निकालना।
ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी की किसी भी मुश्किल को सुलझाने में काम आ सकता है।
बिल्कुल, यही तो बात है, ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये सोचने का एक टूल है।
चलिए अब किताब के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे खुलती है। अध्याय एक में वो कंप्यूटेशन के बारे में सोचने से शुरू करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, पहला सवाल यही कि कंप्यूटेशन आखिर है क्या, क्या ये सिर्फ मशीनें हैं? दासगुप्ता यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, कंप्यूटर जो कि भौतिक मशीन है और कंप्यूटेशन जो एक अमूर्त प्रक्रिया है। वो कहते हैं कंप्यूटेशन का आइडिया तो बहुत पुराना है, प्राचीन एल्गोरिदम में भी था, ये मशीनों से पहले का है।
और यहीं वो कंप्यूटर विज्ञान को एक औपचारिक कृत्रिम विज्ञान के तौर पर पेश करते हैं।
सही। फिर अध्याय दो में कहानी आगे बढ़ती है उन मशीनों की तरफ जो गणना कर सकती थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर से प्रोग्रामेबल कंप्यूटेशन तक का सफर।
यहाँ चार्ल्स बैबेज और एडा लवलेस का जिक्र आता है ना, जिन्होंने शायद पहली बार एक सामान्य उद्देश्य मशीन का सपना देखा था।
हाँ, मतलब एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक काम नहीं बल्कि कई तरह के काम कर सके, बस उसे प्रोग्राम करना पड़े।
लेकिन असली सैद्धांतिक नींव किसने रखी?
वो रखी एलन ट्यूरिंग ने अपनी ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा से। ये एक काल्पनिक, एक थियोरेटिकल मशीन थी।
काल्पनिक, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ?
फायदा ये हुआ कि उसने ये परिभाषित किया कि सैद्धांतिक रूप में क्या क्या कंप्यूट किया जा सकता है, कंप्यूटेशन की सीमाएं क्या हैं। उसने कंप्यूटेशन को एक गणितीय आधार दिया।
अच्छा, तो ट्यूरिंग ने थ्योरी दी, लेकिन प्रैक्टिकल कंप्यूटर कैसे बने?
उसके लिए जॉन वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज्यादातर कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, फोन, सब मोटे तौर पर इसी मॉडल पर आधारित हैं। मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट।
और इसमें सबसे क्रांतिकारी विचार था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, है ना? ये क्या था और इतना जरूरी क्यों था?
हाँ, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट सुनने में शायद तकनीकी लगे, पर आइडिया बड़ा सीधा और शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के निर्देश यानी उसका प्रोग्राम और जिस डेटा पर वो प्रोग्राम काम करेगा दोनों एक ही मेमोरी में रखे जा सकते हैं।
पहले ऐसा नहीं होता था?
नहीं, पहले मशीनें या तो एक खास काम के लिए फिक्स्ड होती थीं या उन्हें हर बार अलग काम के लिए फिजिकली रीवायर करना पड़ता था। बहुत झंझट था। इस कॉन्सेप्ट ने कंप्यूटर को एकदम लचीला, फ्लेक्सिबल बना दिया। आप बस प्रोग्राम बदलिए और वही मशीन बिल्कुल नया काम करने लगेगी।
अच्छा, मतलब वही हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर बदलकर आप कुछ भी करवा सकते हैं।
बिल्कुल, यही वो आइडिया था जिसने कंप्यूटर को सिर्फ एक तेज कैलकुलेटर से बदलकर आज का मल्टीटास्किंग वर्सेटाइल डिवाइस बनाया। इसने कंप्यूटर को यूनिवर्सल बना दिया।
समझ गई। तो आर्किटेक्चर बन गया, मशीनें तैयार हो गईं, पर असली जादू तो वो प्रोग्राम्स हैं जो इन्हें चलाते हैं। तो अब बात आती है एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग की, अध्याय तीन में।
हाँ जी, अध्याय तीन इसी पर है। एल्गोरिथम क्या है, इसे समझे तो ये किसी काम को करने का एक सटीक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, रेसिपी की तरह।
रेसिपी
कैसे? जैसे चाय बनाने की विधि एक एल्गोरिथम है। पहले पानी उबालो, फिर पत्ती डालो, फिर दूध, चीनी, हर स्टेप तय है।
और खास बात यह है कि ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट।
अमूर्त मतलब?
मतलब ये किसी खास बर्तन या स्टोव पर निर्भर नहीं है। आप किसी भी पैन में, किसी भी गैस पर बना सकते हैं, विधि वही रहेगी। वैसे ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, वो किसी भी कंप्यूटर, किसी भी भाषा में काम करेगा, आइडिया वही रहेगा।
ठीक है, और यहीं फिर से ट्यूरिंग मशीन का जिक्र आता है। हाँ, और चर्च ट्यूरिंग थीसिस का भी। ये दोनों मिलकर ये कहते हैं कि कोई भी काम जो प्रभावी ढंग से स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है उसे सैद्धांतिक रूप से एक ट्यूरिंग मशीन यानी एक कंप्यूटर कर सकती है। ये कंप्यूटेशन की यूनिवर्सैलिटी दिखाता है।
और प्रोग्रामिंग, वो कैसे आई इसमें?
प्रोग्रामिंग बस इसी एल्गोरिदम को, इसी रेसिपी को किसी खास कंप्यूटर भाषा में लिखने का तरीका है ताकि कंप्यूटर से समझ सके और चला सके।
शुरू में ही आसान नहीं रहा होगा?
बिल्कुल नहीं, शुरू में ये कला जैसा था, बहुत मुश्किल, गलतियों से भरा हुआ। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़े और जटिल होते गए, मुश्किलें बढ़ती गईं। फिर आया 1960-70 का दशक और सॉफ्टवेयर संकट। प्रोजेक्ट्स देर से पूरे होते थे, बजट से ज्यादा खर्च होता था या बनते ही नहीं थे।
तब क्या हुआ?
यहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जन्म हुआ। लोगों ने सोचा कि प्रोग्रामिंग को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। तरीके खोजे गए जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलैरिटी।
इसमें एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्तता का क्या रोल था? ये शब्द बार बार आ रहा है,
एब्स्ट्रैक्शन। ये कंप्यूटर विज्ञान का शायद सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा मतलब है गैर जरूरी विवरणों को छिपा देना और सिर्फ काम की चीजों पर ध्यान देना।
कोई आसान उदाहरण?
आप कार चलाती हैं, है ना? आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि इंजन के पिस्टन कैसे चलते हैं या गियर बॉक्स अंदर से कैसा है। आप बस स्टीयरिंग पैडल, गियर, लीवर इस्तेमाल करती हैं।
हाँ, सही है।
यही एब्स्ट्रैक्शन है। उसने इंजन की जटिलता को आपसे छिपा दिया। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। हाई लेवल भाषाएं हमें मशीन के जीरोज और वंस की बारीकियों से बचा लेती हैं। हम बड़े आइडियाज पर फोकस कर पाते हैं। ये जटिलता को काबू में करने का तरीका है।
ठीक है, तो हमने एल्गोरिदम समझ लिया, प्रोग्रामिंग का विकास देख लिया, पर क्या सारी कम्प्यूटेशनल समस्याएं एक जैसी होती हैं? क्या सब आसानी से हल हो जाती हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही आता है अध्याय 4 का विषय, एल्गोरिथम और कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता का सिद्धांत। कंप्यूटर विज्ञान सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई समस्या हल हो सकती है या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि उसे कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंटली हल किया जा सकता है।
कुशलता मतलब?
समय और मेमोरी।
हाँ, मुख्य रूप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना समय लगेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी मेमोरी या जगह लगेगी। कुछ समस्याएं आसान होती हैं, कंप्यूटर उन्हें चुटकियों में हल कर देता है, पर कुछ समस्याएं बहुत बहुत कठिन होती हैं।
जैसे कि वो मशहूर पी बनाम एनपी समस्या। ये क्या बला है? इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? हाँ हाँ, बला तो है। पी बनाम एनपी कंप्यूटर विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। शायद मिलियन डॉलर प्राइज भी है इस पर। देखिए, पी क्लास में वो समस्याएं आती हैं जिन्हें कंप्यूटर तेजी से हल कर सकते हैं, मतलब जिनके लिए कुशल एल्गोरिदम मौजूद है। एनपी क्लास में वो समस्याएं आती हैं जिनका हल अगर कोई आपको दे दे तो आप उसे तेजी से जांच सकते हैं कि वो सही है या नहीं, लेकिन उस हल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है।
कोई उदाहरण?
मान लीजिए सुडोकू पहेली। अगर कोई आपको भरा हुआ सुडोकू दे तो आप मिनटों में चेक कर लेंगे कि हर रो, कॉलम और बॉक्स में 1 से 9 तक के अंक हैं या नहीं। ये जांचना आसान है पी जैसा, पर खाली सुडोकू को भरना, उसमें घंटों लग सकते हैं। हल ढूंढना मुश्किल है शायद एनपी जैसा।
तो सवाल क्या है पी बनाम एनपी का?
सवाल यह है कि क्या हर वो समस्या जिसका हल आसानी से जांचा जा सकता है एनपी, उसे आसानी से ढूंढा भी जा सकता है? क्या पी क्लास और एनपी क्लास बराबर हैं? यानी क्या पी इज इक्वल टू एनपी है?
और जवाब?
ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि नहीं, पी नॉट इक्वल टू एनपी। इसका मतलब है कि कुछ समस्याएं वाकई में स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन हैं, उनका कुशल समाधान शायद मौजूद ही नहीं है।
बाप रे, इसका असर कहां कहां पड़ता होगा?
अरे, हर जगह। क्रिप्टोग्राफी, जो आपकी ऑनलाइन पासवर्ड और बैंकिंग को सुरक्षित रखती है, वो इसी पर आधारित है कि कुछ समस्याएं जैसे बड़े नंबरों के फैक्टर निकालना बहुत कठिन है। लॉजिस्टिक्स में सबसे छोटा रूट ढूंढना, दवाएं डिजाइन करना, AI में पैटर्न पहचानना, इन सब में NP कठिन समस्याएं आती हैं।
तो मतलब हमें हमेशा सबसे अच्छा समाधान नहीं मिल पाता?
हाँ, कई बार हमें सबसे अच्छे की बजाय काफी अच्छे, गुड इनफ समाधान से ही काम चलाना पड़ता है, या फिर ऐसे समाधान ढूंढने पड़ते हैं जो ज्यादातर मामलों में काम करें पर हमेशा नहीं।
ये तो हुई कंप्यूटेशन की सीमाओं की बात। किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इंसानी दिमाग के बारे में क्या कहती है?
ये अध्याय 6 में है शायद। अध्याय 6 AI और संज्ञानात्मक विज्ञान पर है। दासगुप्ता AI के इतिहास को देखते हैं, कैसे उम्मीदें आसमान पर थीं, फिर निराशा आई, फिर नई जान फूकी गई। वो अलग अलग अप्रोच की बात करते हैं, सिंबॉलिक लॉजिक बनाम न्यूरल नेटवर्क। और वो हर्बर्ट साइमन और एलन नेवल के एक बड़े आइडिया का जिक्र करते हैं, कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड।
कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड, ये क्या है?
ये विचार कि हमारा दिमाग भी एक तरह से एक सूचना प्रसंस्करण प्रणाली है, एक कंप्यूटर जैसा, और सोचना, तर्क करना, याद रखना यानी संज्ञान, ये सब एक प्रकार का कंप्यूटेशन है।
मतलब मन सॉफ्टवेयर है और मस्तिष्क हार्डवेयर?
हाँ, मोटे तौर पर यही एनालॉजी है। बेशक ये बहुत विवादास्पद विचार है और कई गहरे दार्शनिक सवाल उठाता है।
जैसे कि?
जैसे कि क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं, समझ सकती हैं? क्या उनमें चेतना हो सकती है? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है।
और फिर किताब इस बात पर भी आती है कि कंप्यूटर विज्ञान सिर्फ अपने दायरे में ही सीमित नहीं है, है ना? अध्याय 7।
बिल्कुल, अध्याय 7 यही दिखाता है कि कंप्यूटर विज्ञान आज लगभग हर दूसरे अकादमिक क्षेत्र के लिए एक जरूरी औजार बन गया है।
किन क्षेत्रों में?
अरे, आप नाम लीजिए, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि पुरातत्व में भी। वैज्ञानिक जांच के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन अब मौलिक तरीके बन गए हैं। कंप्यूटेशनल सोच हर फील्ड को प्रभावित कर रही है।
और अंत में अध्याय 8 भविष्य की ओर देखता है।
हाँ, वो उबरते हुए क्षेत्रों की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो इन्फॉर्मैटिक्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, और साथ ही वो सामाजिक और नैतिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिलाते हैं, प्राइवेसी, सुरक्षा, ऑटोमेशन से नौकरियों पर असर, AI के नैतिक सवाल। कंप्यूटर वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी बढ़ रही है।
वाह, ये तो काफी विस्तृत यात्रा रही किताब के जरिए। अगर हम इस सबको समेटें तो कुछ मुख्य संदेश या थीम क्या उभर कर आते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे महत्वपूर्ण थीम है कंप्यूटेशनल सोच। बार बार ये बात आई है, ये सिर्फ कंप्यूटरों वालों के लिए नहीं है। ये समस्याओं को देखने का, उन्हें तोड़ने का, पैटर्न पहचानने का और फिर व्यवस्थित समाधान बनाने का एक तरीका है, एक स्किल है।
हाँ, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकते हैं। जैसे आपने कहा, बजट बनाना हो या कोई ट्रिप प्लान करनी हो, छोटे छोटे स्टेप्स में सोचना।
बिल्कुल। दूसरा थीम मुझे लगता है कि कंप्यूटर विज्ञान का एक शिल्प से विज्ञान तक का सफर है। ये सिर्फ कुछ तकनीकों का जुगाड़ का जमावड़ा नहीं रहा, ये एक परिपक्व वैज्ञानिक अनुशासन बन गया है, जिसके अपने सिद्धांत हैं, अपने तरीके हैं। सॉफ्टवेयर संकट जैसी चुनौतियों ने इसे और मजबूत ही किया है।
तीसरा थीम शायद इसकी अंतः विषय प्रकृति है, मतलब ये दूसरे विषयों से कैसे जुड़ा है।
हाँ हाँ, इसकी जड़ें गणित और तर्क में हैं, पर ये लगातार दूसरे क्षेत्रों से जुड़ता है, सीखता है और उन्हें प्रभावित करता है। मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, भाषा विज्ञान, ये पारंपरिक सीमाओं को तोड़ता है।
आजकल वो डिजिटल ह्यूमैनिटीज का काफी जिक्र होता है, वो भी इसी का उदाहरण है।
बिल्कुल। इतिहासकार, साहित्य के विद्वान सब कंप्यूटेशनल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े डेटा सेट को समझने के लिए।
चौथा थीम जो मुझे लगा वो है सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन, थ्योरी और प्रैक्टिस का।
एकदम सही। सैद्धांतिक खोजें जैसे ट्यूरिंग का काम व्यवहारिक आविष्कारों जैसे कंप्यूटर को जन्म देती हैं, और व्यवहारिक जरूरतें जैसे बेहतर सॉफ्टवेयर नई सैद्धांतिक चुनौतियों जैसे कॉम्प्लेक्सिटी थियरी को सामने लाती हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, यही इसकी तरक्की का राज है।
और पांचवा थीम,
जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है कि कंप्यूटेशन दुनिया को समझने का एक लेंस बन गया है। सूचना, फीडबैक, एल्गोरिदम, जटिलता, उभरता हुआ व्यवहार, ये सब आइडियाज अब हमें सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को समझने में भी मदद कर रहे हैं।
जैसे
जैविक विकास कैसे काम करता है, बाजार कैसे चलते हैं या सोशल नेटवर्क कैसे बनते हैं, ये ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ रहा है।
किताब में कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, यादगार हैं।
हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहावत है जो अक्सर एड्सगर डिक्स्ट्रा से जुड़ी जाती है, कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर के बारे में उतना ही है जितना खगोल विज्ञान दूरबीनों के बारे में है।
ये गहरी बात है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि फोकस मशीन पर नहीं, हार्डवेयर पर नहीं है, फोकस उस सोच पर है, उस प्रक्रिया पर है जिसका अध्ययन हो रहा है, यानी कंप्यूटेशन पर।
एक और विचार था, एक एल्गोरिदम पर विश्वास करने के लिए उसे देखना जरूरी है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आइडिया कितना भी अच्छा लगे, जब तक आप उसे लागू करके, कोड करके, चलाकर नहीं देखते, तब तक आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो काम करेगा या नहीं। ये प्रैक्टिकल होने के महत्व को दिखाता है।
थियरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी हैं।
असल हो भी जाए तो वो इंसानी सोच जैसी नहीं होगी, वो कुछ अलग होगी। जैसे पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है, पर क्या वो मछली की तरह तैरती है? शायद नहीं, वो अपने तरीके से चलती है।
और वो एब्स्ट्रैक्शन वाली बात, कंप्यूटर विज्ञान अमूर्तता का विज्ञान है।
हाँ, ये फिर से उसी बात पर जोर देता है, जटिलता को संभालने के लिए सही मॉडल बनाना, गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ सार पर, एसेंस पर ध्यान देना। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, हर जगह समस्या समाधान की कुंजी है।
तो ये सब दिलचस्प बातें हैं, सिद्धांत है, पर आम इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है, ये कैसे काम आ सकती हैं?
देखिए, एक तो सीधी सी बात है, वो एल्गोरिथम सोच। किसी भी काम को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, छोटे स्टेप्स में तोड़कर देखना। हर स्टेप के लिए क्या चाहिए ये सोचना, फिर एक योजना बनाना। इससे चीजें ज्यादा व्यवस्थित हो जाती हैं, हम भटकते नहीं।
हाँ, और वो एब्स्ट्रैक्शन का आइडिया भी, जब कोई बड़ी चुनौती सामने हो तो ये सोचना कि अभी सबसे जरूरी क्या है, किन डिटेल्स को बाद में देख सकते हैं, इससे हम ओवरवेल्म होने से बच सकते हैं।
बिल्कुल। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज करना हो, उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, हर हिस्से पर अलग से फोकस करना।
टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझने में भी ये मदद करता है ना।
हाँ।
जब हम AI, डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा के बारे में सुनते हैं।
हाँ, अगर हमें इन मूल सिद्धांतों की थोड़ी सी भी समझ हो तो हम इन खबरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं, हम थोड़ा सोच समझ कर अपनी राय बना सकते हैं।
और जो दावे किए जाते हैं AI वगैरह के बारे में, उनका ज्यादा आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाते हैं।
सही कहा, ये हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता, कंज्यूमर होने से आगे बढ़कर एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है। हम समझ पाते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और समाज पर इनका क्या असर हो सकता है और क्या होना चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे जरूरी बात क्या लगी?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कंप्यूटर विज्ञान असल में, जैसा मैंने पहले कहा, विचारों का विज्ञान है, मशीनों का नहीं। ये सोचने का, समस्याओं को हल करने का और यहां तक कि दुनिया को समझने का एक शक्तिशाली नया तरीका है। इसकी ताकत इसकी अमूर्तता और सार्वभौमिकता में है। ये हर जगह लागू होता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही वो ये थी कि ये विज्ञान सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को समझने से भी परिभाषित होता है। यह जानना कि क्या कंप्यूट नहीं किया जा सकता या क्या कुशलता से कंप्यूट नहीं किया जा सकता, जैसे वो PVS NP वाली बात, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि क्या किया जा सकता है। ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है।
सही कहा।
और हाँ, वो विचार कि हमारा मन भी एक तरह की कंप्यूटेशनल प्रक्रिया हो सकता है, कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। इस पर और सोचना पड़ेगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।